ओम शांति। प्रकृति नाथ हमारा बाबा, प्यारा बाबा, और उसके हम सब कौन? प्रकृति पतिसु प्रकृति जीत बच्चे। तो आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत प्रेम और सम्मान और शुभकामनाएं कि बाबा की जो आश है, जो शिक्षाएं हैं, उसकी मदद से, बाबा की छत्र छाया से में रहते हुए हम सभी प्रकृति जीत बनकर दिखाएं बाबा को। ये तो हम सब जानते ही हैं अब कि पढ़ाई तो पूरी हो गई। बाबा ने कहा टू लेट बना, पढ़ाई पूरी। तो बाबा फिर आते हैं किस लिए? बच्चों से मिलन मनाने, नजर से निहाल करने, वरदान देने। पढ़ाई तो पूरी हुई ना, है ना? इसलिए मुरली में क्या होता है? प्यार होता है, शाबाशी होती है, कुछ प्रेरणा होती है, वरदान होते हैं, है? हिम्मत बढ़ाते हैं बाबा, नजर से निहाल करते हैं, शक्ति भरते हैं, है ना? तो जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो माना क्या? एग्जाम निकट। जब कॉलेज में पढ़ाई पूरी हो जाए तो माना इम्तहान होने वाले हैं। तो बाकी दुनिया में जब इम्तहान आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो लोग घबराते हैं, है ना? पता नहीं क्या होगा, पास होंगे कि फेल होंगे। लेकिन हम बच्चे बाबा के क्या करते हैं? कुछ डर लगता है? बाबा ने इतना पक्का कर दिया सुना सुना के, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, होता भी है, देखते भी है। तो बाबा ने निश्चिंत कर दिया है कि निडर बच्चे हैं बाबा के हम सब। तो पेपर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा को उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है कि हम सब उसमें पास हो जाएंगे, पास होकर दिखाएंगे। और फायदे की बात यह है कि बाप टीचर है हमारा। तो जब टीचर अपना बाप हो तो जितने भी पेपर होते हैं ना, क्वेश्चंस, वो पहले सॉल्व करा देता है, है नहीं? प्रश्न भी बताएगा, जवाब भी बता देगा, है नहीं? तो बाबा ने कोई प्रश्न ऐसा बचाया जो आने वाले पेपर में ना हो और बाबा ने ना बताया हो? हर प्रश्न का बाबा ने प्रश्न भी बताया कि बच्चे ये पेपर होगा, इतने टाइम का होगा, 3 घंटे का होता है, बाबा का सेकंड का पेपर होगा, है ना? कौन से पेपर में क्या क्वेश्चन आएंगे, प्रकृति के पेपर में, माया के पेपर में, है ना? और उसका जवाब क्या होगा? तो फिर हार जीत होती है किस आधार पे? कि एन उस टाइम पे, बाद में कहते हैं जब एग्जाम होता रहे तो मुझे जवाब मालूम था, लेकिन उस समय वो विस्मृति हो जाती है, अटेंशन खत्म हो जाता है। क्यों होता है? कि डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जो बच्चे नर्वस होते हैं एग्जाम में तो क्या होता, सब कुछ याद किया हुआ भी भूल जाते हैं, उस समय याद ही नहीं आता, बाद में कहते सब कुछ तो पता था मुझे, देखो कैसा नर्वस हो गया। तो पहली शर्त यह है कि हम सब निडर रहें। तो बाबा ने उसके लिए क्या कहा कि बच्चे डरते क्यों हो? ये क्यों नहीं सोचते कि जैसे लाक्षाग्रह में दिखाते ना पांडवों के, आग लगी सब कुछ हुआ लेकिन भट्टी में भी पूंगरे सेफ रहे। तो आप मेरे पूंगरे हो, आग लगेगी, पक्की लगेगी, लेकिन आप बच्चे सेफ रहोगे। तो सेफ कब रहेंगे? उसके लिए बाबा ने कहा बस एक ही काम करना है, एक तो निडर रहना और दूसरा बाबा की याद, मन बुद्धि बाबा में क्लियरली लगे तो बाबा की टचिंग मिलेगी, बाबा की शक्ति मिलेगी, और बाबा की शक्ति ही आपका कवच बन जाएगा। तो बाहर आग भी लगेगी लेकिन आपको तपस्वी नहीं आएगी। लेकिन जिनका योग नहीं होगा, जो डर जाएंगे, घबराएंगे, बाहर बुद्धि चली गई देहधारियों में, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, मेरे परिवार का क्या हो रहा होगा, तो उस घबराहट में रह गए तो वो तो बचे सो बचे उसका ड्रामा, लेकिन खुद का भी गड़बड़ हो जाएगा, पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए निडरता और मन बुद्धि की लाइन क्लियर। तो फिर बाबा कहते ना फाइनल पेपर होने से पहले बीच में मंथली टेस्ट भी होते रहते हैं, तो इसलिए कुछ समय से आप देखते भी आ रहे हैं कि अब तक के एग्जाम्पल है कि जब भी प्रकृति के, बेहद की प्रकृति के पेपर आए हैं, बाबा का कोई बच्चा अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। एक आध केस है, वो भी कारण उसका ये नहीं कि सुरक्षा नहीं मिली बाबा की, कारण कुछ और था, वो कारण नहीं था। और जापान में भी हुआ तो वहां की बहनों ने बताया मुझे, अपना अनुभव शेयर किए कि बिल्डिंग जैसे होती है सोसाइटी की, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है तो फ्लोर सब मिले रहते ना मकान आपस में, तो बोले मकान फट गए आसपास के और बिल्डिंग हुई हमारी, बाबा का जो सेंटर था यूं खड़ा रहा, और सर चौकन्ने ये क्या, आसपास सब फट गई दरारें आगे, और बाबा के बच्चे के जो बाबा का जो बिल्डिंग था सेंटर वहां खड़ा रहा, बाबा के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई। गुलबर्गा में हुआ, कर्नाटक में हुआ, कई जगह नेपाल में देखा, गुजरात का तो पता ही है सबको। तो प्रकृति के विपरीत, प्रकृति भी दो तरह की है, एक बेहद की और एक हद की। तो बेहद की प्रकृति तो हम जानते हैं, पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो आजकल जब आपदाएं आती हैं तो आजकल गवर्नमेंट ने कौन से कोर्स चालू कर रखे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स। कहीं आपदा होती है तो टीम्स जाती हैं एक्सपर्ट्स की, मदद करती है, फायदा भी होता है। लेकिन आजकल हम देखें कुछ समय से कि एक तत्व हलचल में नहीं आता है, एक से अधिक तत्व हलचल में आएंगे। भूकंप आएगा फिर बारिश चालू हो जाएगी, तूफान आएगा फिर और चीजें चालू हो जाएंगी, तो रेस्क्यू करने का भी मौका नहीं मिलता। देखा ना बद्रीनाथ में क्या हुआ, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स पहुंच ही नहीं पाए, सारी टीम तैयार और कोहरा इतना वहां पे कि सब काफी समय तक वहां पे रेस्क्यू टीम ही नहीं पहुंच पाई, और लोगों ने, काफी लोगों ने आत्माओं ने शरीर छोड़ा। तो कई तत्व मिलकर अब एक साथ आ रहे हैं, पहले एक एक तत्व आता था, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ आ गया, अब कई तत्व इकट्ठे होते हैं। तो जब ऐसे कई तत्व इकट्ठे होंगे, और पहले एक जगह में होगा, चलो टीम पहुंच जाए, नेपाल पहुंच गई, लेकिन जब हर देश में के हर कोने में हंगामे हलचल होंगे प्रकृति के, हर देश में, हर प्रदेश में मास स्केल पे, तो कहां से किसकी टीम जाएगी। तो जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम है सब फेल हो जाने हैं, तो कौन सा मैनेजमेंट काम आएगा उस समय, सिर्फ एक आएगा, राजयोग मैनेजमेंट, और कुछ काम नहीं आना, स्पिरिचुअल पावर ही काम आएगी। और उसके एग्जाम्पल देखे, जहां जहां भी आपदाएं आई हैं प्राकृतिक जबरदस्त, वहां राजयोगी बच्चे ही सेफ रहे, और भी स्पिरिचुअल लोग भी सेफ रहे हैं दूसरे सेक्टर्स के, लेकिन बाबा के किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी भी तरह का जान का माल का। तो ये एग्जाम्पल है प्रैक्टिकली कि बाबा वास्तव में रक्षा करते हैं, तो इसलिए निश्चिंत रहे, लेकिन उसके लिए निडरता और फरिश्ता रूप की स्टेज चाहिए, जो बाबा ने अभी लास्ट में, लास्ट बार जब आए तो बाबा कौन सा मंत्र कौन से देखे गए, फरिश्ता। अगर फरिश्ता स्टेज पकड़ ली हमने और बाबा कहते मेरी मदद है, आप अभ्यास करोगे तो फिर नेचुरल हो जाएगी, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अब राजयोग किस तरह मदद करेगा इस विषय में बात करेंगे, लेकिन बेहद की प्रकृति के पेपर में पास होने के लिए ये जरूरी है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कल्प कल्प हमें प्रकृति के पेपर में पास कराया है बेहद की में, अब भी कराएंगे, निडर हो रहे। दूसरा आता है हद के पेपर, हद की प्रकृति। तो हद की प्रकृति कौन सी है, ये शरीर। बेहद की प्रकृति के तत्वों का जो संग्रह है इस शरीर के रूप में, इसका जो पेपर आता है, बाकी तो पास कर लेते हैं, नष्ट मोही बन जाते हैं, कोई गया निकट संबंधी, चलो वो भी दिल पक्का कर लिया ज्ञान के हिसाब से। लेकिन जब कर्म भोग आता है शरीर का, तो अच्छे अच्छे मारुति हिल जाते हैं, है ना। तो ये पेपर बड़ा कड़ा है, लेकिन आसान भी है अगर बाबा कहते हैं अभ्यास है तो। तो हद के पेपर में क्या क्या परेशानियां मुख आती हैं, एक तो रुकावट आती है इच्छाएं। तो बाबा ने कहा जो मेरे अनन्य बच्चे हैं उनको छप्पन भोग चाहे ना मिले, लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी, किसी और को मिले ना मिले आपके पास दाल रोटी पहुंच जाएगी, है ना, कहा है ना, याद है। तो भगवान ने कहा है, भगवान तो गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, सत्यता का सागर है, उसकी बात तो कभी असत्य हो ही नहीं सकती है। तो भगवान ने गारंटी दे दी एक तरीके से, लेकिन कौन से बच्चे, जो बाबा के अनन्य बच्चे होंगे, सेवा में और याद में पक्के होंगे, उनके पास अपने आप ही ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो इसलिए दाल रोटी आसानी से हजम भी हो जाएगी, छप्पन भोग हजम में नहीं होंगे, आजकल तो ताकत ही नहीं हजम करने की, लेकिन उतना जरूर मिलेगी। अगर इच्छा है कोई भी हद की, कोई आकर्षण है भोजन का, पदार्थों का, तो फिर वो याद आएगा तो योग फिट जाएगा, योग फिट गया तो फेल हो जाएंगे फौरन। तो इसलिए चेक करें कि जब हम भोजन खाते हैं तो आसक्ति से खाते हैं या अनासक्त भाव से खाते हैं। दादा विश्व तुम जानते होंगे बहुत से, तो दादा से कभी बात होती थी, हम देखते थे कि दादा को बिल्कुल अनासक्त भाव से भोजन करते थे। तो अगर जैसे माना रसगुल्ले बने किस दिन, और रसगुल्ले दो दो मिलेंगे, और कोई कहे दादा एक और ले लो, अगर एक है तो बाबा दादा कभी दूसरा लेता ही देते, बोले अगर एक की जगह दो खाया ज्यादा अच्छा लगा तो माना आ सकती है ना। और कोई माना दो रोटी की भूख है, आपने उस दिन आधी खाई, भी क्यों नहीं खाई भैया स्वाद अच्छा नहीं था, तो माना क्या आधी भी खाई तो कम क्यों खाई, बीमारी हो तो बात अलग है, इसका मतलब आ सकती है ना। तो हम चेक करें कि हमारा भोजन में पदार्थों में किस चीज की आसक्ति तो नहीं है। तो एक तो ये जो प्रकृति के तत्व में पदार्थ हैं, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, तो ये हमारी आवश्यकताएं देखनी पड़ेंगी कि इनके प्रति कोई आसक्ति तो नहीं है, और चेक करना पड़ेगा है? हम सोचे छह रोटी की भूख है, छह रोटी मिले भाई वहां तो राशन मिलेगा बिल्कुल टाइम पे, जैसे यज्ञ की स्त्री है ना कि जब बैगरी पार्ट आया तो सबको बराबर बराबर दाल बराबर बराबर रोटी गिनती की मिलनी है, उसी में आपको तृप्त हो जाने का है। और वो शरीर जो चलेगा, शरीर को उस भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो शरीर चलेगा वो प्रकृति की बाबा की ताकत से चलेगा। आपने कहा बहुत से योगी कई कई साल तक भूखे रहते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स प्रमाण है, तो कैसे रहते हैं? वो योग के बल से शरीर को शक्ति मिलती है, तो वो अभी से करना पड़ेगा अभ्यास, है ना। ऐसा नहीं कि उस समय तो कुछ भी नहीं होगा, उस समय तो बस हंगामा हंगामा होगा। तो उसके लिए अभी से चेक करना पड़ेगा, किस दिन खाना ना मिले एक टाइम तो क्या हालत होती है, अपने को चेक करें। अगर कमजोरी है तो फिर बाबा की शक्ति लेके उसको सेट करें अपने सेंटर को, सब दिमाग को। तो हद के पेपर में एक तो आएगी आवश्यकताएं, इच्छा तो छोड़ दो, आवश्यकताएं। तो ऐसी में एक बार बाबा से रूरियान कर रहा था मधुबन में कि बाबा आवश्यकता तो पूरी करनी पड़ेगी ना भाई, चलो आप हलवा नहीं खिलाओ, रोटी तो चाहिए, चलो बहुत बढ़िया कपड़े नहीं चाहिए, साधारण तो चाहिए। तो एक आवाज गूंजी अचानक, तो मैं कह रहा बाबा नीड तो आवश्यकता इच्छा में क्या फर्क है, कभी सोचा इच्छा और आवश्यकता को कैसे पहचाने हम? माया कई बार पहचाने नहीं देती ना, क्या इच्छा है क्या आवश्यकता है, कैसे पहचानेंगे? जिसके बिना काम चल जाए वो है इच्छा, और जिसके बिना काम ना चले वो है आवश्यकता, है ना। दो रोटी दाल एक गिलास पानी कम से कम ये तो आवश्यकता है ना, इसके बिना शरीर नहीं चलेगा, हलवा पूरी के बिना चल सकता है ना। तो जिस चीज के बिना जब भी कोई चीज सामने आए हम यूज करें तो हम देखें कि इसके बिना काम चल सकता है, इस चीज के खरीदे बिना काम चल सकता है, तो अगर काम चल सकता है तो माना ये इच्छा कर रहे हैं हम, त्याग दो उसको, आती है तो भले यूज करो लेकिन आसक्ति से नहीं। और जिसके बिना काम नहीं चले तो हमने कहा बाबा आवश्यकता तो पूरी करनी पड़ेगी। तो बाबा ने एक आवाज गूंजी कि नीड की भी नीड नहीं है। हमने कहा मैं नीड की नीड नहीं माना, मतलब क्या? नीड तो नीड है, तो चाहिए चाहिए ना, दर्द हो रहा है दवा तो चाहिए। बोले नीड की भी नीड नहीं है। तो मैंने रूरियान बाबा से तभी चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आवाज आ रही है गूंज रही है, बोले नीड की नीड क्यों नहीं है? बोले बाबा को तुम्हारे शरीर की नीड ही नहीं है, तो शरीर की नीड पूरी करने की क्या जरूरत है, मेरे पास आओगे ना लौट के, इसलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा को तुम्हारे अगर शरीर की नीड है तो बाबा शरीर की नीड पूरी करेगा, और अगर शरीर की नीड नहीं है माना तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है शरीर की, तो तुम्हारे शरीर की नीड पूरी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है ना। तो वो इतनी अच्छी बात लगी कि नीड की भी नीड उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आवश्यकता पूरी होगी या नहीं होगी, बाबा को रखना होगा तो पूरी कराएगा, नहीं रखना होगा तो नहीं कराएगा, क्या फर्क पड़ता है, जानना तो है, दो दिन पहले जाओ दो दिन बाद जाओ क्या अंतर पड़ना है ना। तो नीड की भी नीड नहीं है, तो वो उस पॉइंट पे बुद्धि अटकती थी कि बाबा आवश्यकता तो पूरी करनी पड़ेंगे, तो उस दिन से लगा कि नीड की भी नीड का सोचने की जरूरत नहीं है, नीड की भी नीड नहीं है। तो वो आवश्यकता फिर भी बाबा पूरी करेगा, अगर उसे हमसे कुछ सेवा करानी होगी, मनसा सेवा करानी होगी और सेवा करानी होगी, तो बाबा शरीर को जिंदा रखेगा, नहीं तो क्या करना है इसका, अगर ये बाबा के मतलब का नहीं है तो फिर इसको रख के करना भी क्या है। तो वो चीज बड़ी अच्छी उस दिन टच करी बुद्धि को, बहुत राहत मिली। तो एक है आवश्यकताएं, इच्छा तो छोड़ ही दो, वो तो चेकिंग आज से करना चालू करना कि किस किस चीज की इच्छाएं आपको खींचती है। और दूसरा देहधारी की याद, अगर याद करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव बताता हूं यहाँ पे कि बच्चे थे लौकिक बच्चे, बारिश बहुत जबरदस्त पड़ी और जिस एरिया से गुजर के वो आते थे वहां घाटी पड़ती थी इस तरह करके यूं, और बस यूं निकल के बच्चे आते थे, तो वहां घाटी वो पानी में दब जाती जब बारिश पड़ती थी पहाड़ी, तो वो सब का सब एरिया
पानी में डूब जाता था और अचानक बारिश चालू हुई, बच्चों की छुट्टी का टाइम आया तो एकदम मुझे लगा कि बच्चे अगर बस वहां से चल गई होगी और क्रॉस कर गई होगी तो आज बस भी गई और बच्चे भी गए। लेकिन बारिश तो जबरदस्त थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल, माउंट की पहाड़ी तो बहुत जबरदस्त होती है। तो हमने कहा बाबा बच्चे आपके, आप जानो हम तो सेवा में बैठे यहाँ पे। तो बाबा बस सकाश दिया लाइट के घेरे में बच्चों को विजुलाइज करके, बाबा आप जानो आपके बच्चे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो हम तो फिर निश्चिंत हो गए, कर भी क्या सकते थे, हाथ में भी तो नहीं था ना अपने, और जो स्कूल का एरिया था वो भी काफी निचले हिस्से में था। उसके बाद में कुछ समय बाद बारिश वारिश थम गई, पानी उतरना शुरू हुआ। बच्चों से पूछा क्या हुआ, बोले बोले पापा आज तो हम बह जाते। क्या हुआ कि जब पहाड़ी पे बस यूं चलनी, मतलब वहां से तो निकल गई घाटी उस जगह से, तो जब यूं चलना शुरू हुआ तो ऊपर से पानी बहाव बहुत जोर सा, और हमारे किवाड़ बाहर से गाड़ी के खुले नहीं, बाहर प्रेशर होता ना पानी का तो किवाड़ नहीं खुले, और सामने से पानी आ रहा था इंजन की तरफ से बहता हुआ, तो अंदर वाटर लेवल बढ़ने लगा। तो वाटर लेवल बढ़ना और बाहर से किवाड़ नहीं खुल रहे, अंदर से बैठे व्यक्ति के तो जल समाधि होनी है। तो अचानक बाबा के कुछ बच्चे वहां पे अचानक आए, बोले चलो घूमे देखे क्या हो रहा है। तो वहां देखा रहे भाई ये तो अपने हॉस्टल की गाड़ी है, उन्होंने जबरदस्ती किवाड़ खोले बाहर से, तो बाहर से तो खुल गए प्रेशर देके, अंदर से नहीं खुल रहे थे, और पानी एकदम उतरना शुरू हो गया। बच्चों को कंधे में बैठाकर घर पे छोड़ गए। काश उस दिन राजयोग नहीं होता, बाबा का कनेक्शन नहीं होता, बाबा को सौंपा नहीं होता, तो उस दिन जल समाधि हो गई होती। तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाबा सब कुछ करवा सकता है, कर सकता है। तो ये प्राकृतिक कैसे सुरक्षा होती है आपदाओं में, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, है ना। औरों के साथ भी घटा होगा, एक एग्जाम्पल ये कि कैसे बेहद के उस पेपर में बाबा कैसे रक्षा करता है अपने बच्चों की। हमने इतनी बारिश में बाबा के बच्चे दूसरे मधुबन के जाके थे घूमते, वहां कैसे पहुंच गए, प्रेरणा से पहुंचे ना बाबा की, ले भी गया गाड़ी भी खुल गई, कंधे बैठा ले, मालूम है 5 मिनट बाद पहुंचते तो क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता, गाड़ी बह गई होती, सब कुछ बह गया होता। तो ये जो राजयोग का प्रयोग है ये सफल हुआ, और इस तरह बाबा रक्षा करता है विभिन्न तरीके से। तो इच्छाएं तो हम चेक करना शुरू कर दें आज से, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, हो भी सकती है ड्रामा अनुसार, लेकिन आस नहीं रखो, है ना। और आवश्यकताएं बाबा पूरी करेंगे, और आवश्यकता की भी चिंता नहीं करो, वो बाबा का काम है, जरूरत होगा शरीर की नीड होगी बाबा को तो इसकी नीड पूरी हो जाएगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज आती है शरीर के रोग, जब कर्म भोग आता है तो उस समय योग भी नहीं लगता, जो बहुत अभ्यासी पक्का योगी होगा बीमारी के टाइम में उसका ही योग लगता है। तो जब दर्द होता है या कष्ट होता है, भयंकर बुखार होता है, ये होता है, तो उस समय योग वो सब गायब हो जाता है। वही सच्ची पहचान है उस समय कि आप कितने अच्छे योगी हैं। वैसे तो रोज कहते बाबा योग बड़ा अच्छा लगा आज, बहुत आनंद आया, बाबा बहुत शक्ति मिली, बहुत अच्छी अनुभूति हुई, लेकिन उस समय हमारा योग की परसेंटेज कितनी है वो एक्चुअली सही पहचान है कि हम पेपर में कितने नंबर लेने वाले हैं, है ना। तो वो अभ्यास तो अभी करना पड़ेगा, है ना। तो कर्म भोग जब आता है तो उस समय राजयोग कैसे हेल्प करेगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल अनुभव बताऊंगा आपको। कर्म भोग को दूर जीतने के लिए एक तो औषधि की शक्ति है, हम सब जानते हैं, दवाइयां लेते हैं, कई बार जब दवाई फेल होती है, दर्द भयंकर होता है, कष्ट, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, इंजेक्शन बेहोश नशे का लगा देते हैं, तो नशे में आदमी पड़ा रहता है। अगर देखो नशे से भी काम नहीं होता तो फिर एनेस्थीसिया दे देते हैं, बेहोशी की दवा। तो बेहोशी की जो दवा मिलती है तो फिर तो उसे पता ही नहीं, काट लो कहीं से भी, सुन कर दिया, काट लो कोई भी अंग कर लो, कितना बड़ा ऑपरेशन कर लो, लेकिन उसे पता ही नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है कि आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, है ना, अंदर ही होती है ना आत्मा, तो फिर अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं दवाइयों के, उन्होंने बीच में ब्लॉक लगा दिया उन नसों के बीच में जो दर्द की संवेदना ऊपर ले जाती है और आत्मा। तो जितनी भी हमारे कष्ट होता, कुछ भी सेंसेशंस होती हैं, नाड़ियां होती हैं, उन नाड़ियां ब्रेन तक सूचना ले जाती हैं कि यहां पर इस हिस्से में ये परेशानी है। अब ब्रेन तो स्थूल चीज है, ब्रेन में सेंस है, बहुत से लोग जिंदे होते हैं, माना कोमा में होते, डीप कोमा में, आत्मा होती है, हार्ट लंग मशीन लगी हुई है, डॉक्टरी साहब से जिंदा है लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं है, तीन तीन महीने तीन तीन साल तक कहाँ रहती है फिर आत्मा, रहती है शरीर के अंदर है। इसका मतलब ब्रेन और आत्मा के जो बीच का कनेक्शन है उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि ब्रेन की सूचनाएं भी आत्मा तक नहीं पहुंचती है, है ना। तो जैसे कार्बन तार जोड़ते ना और बीच में कार्बन आ जाए, आप कहते तार तो बिल्कुल मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, हिला के देखेंगे बिल्कुल फिक्स है टाइट है, फिर भी करंट नहीं आया, लेकिन कार्बन थोड़ा हटा हो तो करंट आ जाता है। तो ऐसे कोई केमिकल ऐसा पैदा होता है बीच में जो संवेदनाओं को, शरीर के संवेदनाओं को ब्रेन तक नहीं पहुंचाएगा, या तो नस में यही ब्लॉक लगा दिया तो यहां तक का सुनना यहां का साफ है दिखाई महसूस हो रहा है, या फिर ब्रेन के अंदर यहां की सूचना जहां जाती है ब्रेन के हाइपोथैलेमस एक हिस्सा होता है वहां से उस सूचना का जो प्रसारण है आत्मा तक वहां कहीं ब्लॉक लगता है। तो वो सब केमिकल प्रक्रिया है सारी, और ये सिद्ध हो चुका है कि राजयोग के द्वारा जैसे विचार हमारे होते हैं वैसे केमिकल्स हमारे अंदर पैदा होते हैं। ये वैज्ञानिक जांचों से पता पड़ गया है कि अच्छे विचार हैं अच्छे केमिकल, बुरे विचार हैं बुरे केमिकल। तो औषधि की शक्ति चाहिए, फिर अगर नहीं है तो बेहोशी की शक्ति चाहिए, एनेस्थीसिया चाहिए, लेकिन अगर वो भी नहीं लास्ट में ये सब थोड़ी मिलेगा, ना दवा मिलेगी ना कुछ मिलेगा, डॉक्टर खाली हो जाएंगे सारे, है ना। तो एलोपैथी भी बिल्कुल नहीं मिलेगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, दवाई नहीं आएंगी, ट्रक से नहीं होंगे दवाई लाने के लिए, तो उस समय होम्योपैथी वालों की दवाई काम करेगी, एक आध बूंदी काम कर जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो फिर जो आयुर्वेद वाले हैं उनका जो पेड़ पौधे पत्ते की जानकारी उनको होती है उनका पार्ट आएगा, है ना। और उसके बाद तो फिर सब फेल हो जाने का है, फिर चलने की तैयारी करने का है। तो कहने का अर्थ है अगर कोई भी साधन नहीं हो तब क्या करेंगे, उस समय राजयोग की ताकत काम करती है। मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं उसके। एक तो ये सत्य है कि ये जब कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि सहन शक्ति बहुत होती है, बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही सारे हॉस्पिटल को उठाकर रख लेते हैं, घर को उठाकर धर लेते हैं, जरा सुई चुभ गई तो चिल्ला देंगे। और बहुत से ऐसे कितना भी बड़ा ऑपरेशन करो कितना चीरा लगाओ जख्म होते हैं ड्रेसिंग करते हैं शांत बैठे रहते हैं। आखिर क्यों, दर्द तो उतना ही हो रहा है ना, लेकिन उसको फीलिंग क्यों नहीं है और दूसरे को, सहन शक्ति का फर्क है। तो सहन शक्ति क्या है फिर, सहन शक्ति क्या है कि जैसे कुछ दवाई दे दो अगर नशे की या दर्द की तो दर्द तो होता है महसूस तो नहीं होती, ऐसे राजयोग के द्वारा कुछ जो केमिकल्स बॉडी में ज्यादा बनते हैं जिनके उनको टॉलरेंस पावर सहन शक्ति ज्यादा होती है। जो लोग शांत और खुश होते हैं वो सहन शक्ति उनके अंदर ज्यादा मिलेगी, अशांत गुस्से वाले जो लोग होते हैं उनमें सहन शक्ति बहुत कम मिली, थोड़ी बात में ही आपा भार हो जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी सहन नहीं कर पाते। तो राजयोग से क्या होता है कि एंडोर्फिन, मॉर्फिन का नाम सुना है, पुराने लोग जानते होंगे, पहले ज्यादा दवाइयां नहीं होती थी, दर्द में चिल्लाता था या दर्द बेहोशी ज्यादा परेशानी मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दो, वो एक दवा थी बस, तो वो लगाया मॉर्फिन पहले दिन लगाया और आदमी शांत, दर्द का भी एहसास नहीं, ज्यादा मात्रा में लगा दो तो बेहोश हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तत्व जो बाहर से फैक्ट्रियों से बनके आते हैं लगते हैं इंजेक्शन के रूप में, ऐसे तत्व हमारे ब्रेन के अंदर भी पैदा होते हैं जिन्हें एंडोर्फिन कहते हैं, एंडो माना अंदर, ऑर्फिन मॉर्फिन, तो मॉर्फिन और एंडो, एंडोजिनस मॉर्फिन माना एंडोर्फिन, वो केमिकल अंदर बंद होते बनते हैं और वो बनते हैं जिस उससे मन में शांति का अनुभूति होती है। तो इसलिए योगी जो सच्चा योगी है देखो शांत चेहरा खुश चेहरा रहेगा, ज्यादा बोलेगा नहीं, तकलीफ भी होगी चुप लगा जाएगा, कोई चला गया बहुत प्रियजन तब भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है ना, और कुछ लोग फौरन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो योगी या शांत आत्मा होती है माना योगी आत्मा होती है उनके अंदर ब्लड में केमिकल लेवल ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनके अंदर सहन शक्ति भी एंडोर्फिन्स, तो उनके अंदर तो उनमें क्या सहन शक्ति ज्यादा होती है, यह राजयोग का पहला फायदा। लेकिन अगर तकलीफ ज्यादा है तो बाबा ने कौन सी दवाई बताई है कि बच्चे अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा लो। अशरीरी भव क्या होता है, रात को आप सो जाते हो अशरीरी होते हो, सब कुछ होता है कोई काटे चोटे, गहरी नींद में हो तो पता ही नहीं होता कौन आया कौन गया, है ना, तो पता ही नहीं होता जो अशरीरी अवस्था, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं, वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट सिस्टम है बाय डिफॉल्ट कि ऑटोमेटिकली हम अशरीरी हो जाते हैं, एनर्जी भर जाती है सुबह को फिर काम पे चालू हो जाते हैं। वो प्रक्रिया जो इनवॉलंटरी होती रहती है हमारे जीवन में, हर पशु पक्षी के जीवन में, वो बाबा ने प्रकृति में इनबिल्ट सिस्टम है बाय डिफॉल्ट, वो हम एक्टिवली राजयोग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो उसके द्वारा बहुत से लोग शरीर को इतना पक्का कर लेते हैं, ऐसे भी केसेस हैं कि जो फुल कॉन्शियसनेस में उन्होंने ऑपरेशन कराए हैं, डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं बहुत भयंकर पेन होता है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल जो कहते हैं आप कर लो ऑपरेशन कोई दिक्कत नहीं हमें, और कर लेते बिना सुनो का इंजेक्शन लगाए, तो वो अपनी योग की शक्ति है। लेकिन ऐसे लोग कम मिलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योगी चाहिए, है ना। हम तो योगी भी हैं, राजयोगी भोगी भी हैं, राजभोग भी चाहिए, तो योग कम है राजभोग ज्यादा है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि भोग कम राजयोग ज्यादा चाहिए, तो फिर विजयी हो पाएंगे। तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास बाबा उसे कहते फरिश्ता अवस्था के द्वारा अगर हम रहेंगे, तो फरिश्ता अवस्था ऐसा है कि जैसे आपको थोड़ा नशा दे दिया, तो फरिश्ता अवस्था में क्या होता है, अगर सूक्ष्म वतन पहुंच गए तो यहां धरती की कोई बात याद आती है क्या? नहीं आती। बाबा से बात करते रहो, जब तक घूमते फिरते रहो, पता ही नहीं होता, बाद में पता पड़ता अच्छा एक घंटा हो गया। और जब परमधाम पहुंच जाते हैं तब तो बिल्कुल पता नहीं रहता कहां क्या हो रहा है। अच्छा योग जिस दिन लगता है तो अनुभव होता है ना बीज रूप में, नीचे का अनुभव ही नहीं होता। लेकिन अभी अभ्यास क्या है कि हम पहुंच तो जाते हैं सेकंड में, बीज रूप अवस्था का सबको पता है, लेकिन टिकते कितनी देर है। तो माना प्रकृति का पेपर आया, ऊपर से कोई पत्थर गिर गया, टांगे फंस गई और डिटेच होने में समय लग गया एक सेकंड से ज्यादा, तो दर्द की अनुभूति होगी, खींचेगा। तो ऊपर गए तो सही, लेकिन लौट के आगे दो सेकंड बाद, तो फिर तो तलफना पड़ेगा ना, फिर पेपर में कैसे पास होंगे। तो अभ्यास ये नहीं कि हम पहुंच जाते कितनी देर में, वो तो है ही, लेकिन टिकते कितनी देर है, ये अभ्यास बढ़ाने का है। अगर हम ज्यादा देर टिकने का है, कम से कम माना एक घंटे मदद पहुंची हमारे पास, तो एक घंटे तो ऐसी हमारी शरीर अवस्था रहे कि जब तक मदद पहुंचे, कोई हाथ का थोड़ी पहुंच जाएगा तुरंत निकालने के लिए, दबे पड़े हैं। अगर बचाना भी कोई चाहे तो कह रही कष्ट भी है, शरीर भी छोड़ना है, तो शरीर छोड़ने से पहले तड़फन लगे तो फिर तो स्थिति पेपर में फेल हो जाएंगे। तड़फन नहीं होनी चाहिए ना, चेतना बिल्कुल डिटैच होनी चाहिए। वो चेक करना है कि कितनी देर ऊपर बिल्कुल है शरीर अवस्था में ठहरते हैं, और ये अभ्यास से आएगा। बाबा क्योंकि मददगार है, जैसे समय बदल रहा है, देखो बाबा पहले दृष्टि थोड़ी देते थे और मुरली ज्यादा चलती थी, अब मुरली बहुत थोड़ी चलती है, दृष्टि का पार्ट कितनी देर रहता है बाबा का, शक्ति भर रहा है। तो ऐसे अगर हम योग में बैठते हैं, अब आप अनुभव किया होगा बाबा की मदद एक्स्ट्रा मदद है इस समय। तो इस समय थोड़ा भी अभ्यास करेंगे हम तो ज्यादा मदद से जल्दी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो चेक ये करना है कि फरिश्ता स्टेज और अशरीरी बिंदु रूप की स्टेज हमारी कितनी देर रहती है, तो उसके लिए संकल्प दे के बैठे कि आज हम 5 मिनट बैठेंगे, फिर 5 मिनट में जीत मिल गई, अच्छा 10 मिनट बैठेंगे, और फिर चेक करें कि 10 मिनट में कितनी बार नीचे आए, और नीचे आए तो फिर आए क्यों, किसी देहधारी ने खींचा, किसी जिम्मेदारी ने खींचा, किसी बीमारी ने खींचा, किसी इच्छा ने खींचा, क्या चीज थी, कोई रस ऐसा है संसार का जो हमें खींच रहा है, तो वो कैच उसको कैची लगाना शुरू करेंगे तो फिर जीत मिलेगी। क्योंकि चेकिंग मास्टर सब बन गए, सब बाबा के बच्चे होशियार हैं, सब नॉलेजफुल है, क्योंकि ज्ञान सागर ने सारी नॉलेज दे दी, सिर्फ उसकी अटेंशन और अभ्यास की बात है। तो अगर ये पेपर ये अभ्यास पक्का होगा तो बाबा कहते हैं फिर पेपर में पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरी बात आती है इसमें, अब मैं बताता हूं कि अगर फिर भी जो बाबा के अनंत बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा मदद देता हूं, अनंत बच्चे जिन्होंने यो सेवा में इतना बिजी रहे कि तपस्या का चांस उतना नहीं मिल पाया, तो बाबा उनको एक्स्ट्रा फेवर देता है। जैसे बच्चों को, जो बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं बीच में, उसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं। तो मुझे यहां हॉस्पिटल में 10 वर्ष बड़ा सौभाग्य रहा, सौभाग्य पद्म भागशाली रहे, 10 वर्ष ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा का अवसर मिला। तो दादी ऑलराउंडर को जानते हैं आप लोग, कितने जानते हैं, दादी गुलजार जी की जो मदर थी लौकिक और अलौकिक सिस्टर के, तो अलौकिक मदर थी, तो वो जो है दादी ऑलराउंडर, पहले यहां पर रही थी, तो लास्ट टाइम उन्होंने शरीर यहीं पूरा हुआ उनका, تو قریب 10 دن کوما میں رہی وہ, اور میں فزیشن تھا تو ہم نے سب چیک کیا اور ہمیں کوما کا کوئی کارن نظر نہیں آیا. بہت ڈھونڈا کہ بیماری کا کارن کیوں بے ہوشی میں ہے, یہ پتہ نہیں پڑ پایا. سارے ٹیسٹنگ ہو گئے, سب کچھ نارمل. ٹیوب پڑ گئی کیونکہ لیٹرین پیشاب کا ہوشی نہیں ہے, تو ناک سے بھی ٹیوب, سب ٹیوب پڑی ہوئی ہیں, لیکن کوئی ان کو سینسیشن, یعنی تھوڑی بھی ٹیوب پڑے تو آدمی ایک دم درد کرے گا, چلائے گا, کر رہے گا, کچھ پتا نہیں. ڈیپ کوما میں تھی تو ہم سوچ رہے پتا نہیں کیا کارن ہے, تو ڈاکٹر حساب سے کوئی نہ کوئی ڈائگنوسس تو بنا دیتے ہیں. آرٹروسکلیروٹک کوما کر کے برین سرکولیشن گھٹ گیا ہے وردھاوستھا کی وجہ سے, اور اس وجہ سے کوما میں چلی گئی ہیں. تو بس نرسنگ کیئر تھی, جب تک شریر ہے بھائی سیوا کرتے رہو. تو ایک دن میں ایسی ہم ٹیسٹ کر رہا تھا میں کتنے کوما میں, کتنی گئے چیتنا کتنی ہے, تو بہت جب میں دبایا کافی دیر تک کرتا رہا تو دھنی ایک دم بولی مٹھی کیا ہے, دادی اٹھتی کیوں نہیں ہو, بولتی کیوں نہیں ہو, ارے مٹھے بابا کے پاس بیٹھی ہو نا. کوما کا کوئی پیشنٹ ایسا نہیں کہہ سکتا ارے مٹھے کیا ہے, دادی بولو نا سب پریشان ہیں, ارے بابا کے پاس بیٹھی ہو نا, اور اتنی اسپشٹ آواز. اور اس کے بعد ایک دم پھر ہم نے خوب دبایا خوب کرا تو بابا نے بھیج دیا ہوگا جا کے, بھائی بچہ زیادہ کر رہا ہے, جا کے جواب دے کے ابھی تو کرے جائے گا یہ تو, ہے نا, کبھی یہاں دوا کبھی یہاں دوا. اور کر کے ہم سوچ رہے کہ آج تک ڈاکٹری میں ایسا کوئی کوما پڑھا ہی نہیں جہاں 10 دن کا کوما والا پیشنٹ 6 دن بعد وہ اٹھ کے مطلب ایک دم کہے لیٹے لیٹے بالکل ہوش میں, جیسے کوئی آدمی نیند میں کرو نا جھنجھلا کے بولتا ہے, تو جھنجھلاٹ نہیں تھی کہ ارے مٹھی کیا ہے کیا کر رہا ہے, دادی اٹھتی کیوں نہیں ہو, ارے بابا کے پاس بیٹھی ہو نا. تو یہ بابا کی مدد, بابا ایسے بچوں کو ٹرانس میں کھینچ لیتا ہے. شریر اپنا کاریہ کر رہا ہے, کرم بھوگ چکتا ہو رہے ہیں, لیکن چیتنا آتما بھی شریر میں, دوسرے چھوٹ جائے گا, ہٹ بند ہو جائے گا آتما, لیکن چیتنا بابا کے پاس ہے اور اتنے پرسنٹیج میں ہے کہ انہیں یہاں کا احساس ہی نہیں ہے, بس کنیکشن بنا ہوا ہے آتما کا چیتنا کا شریر سے. تو اس کے بعد کوئی بات نہیں, پھر کوما میں چلے گی. 3-4 دن پھر گزر گئے. ایک دن اچانک دادی, بڑی دادی آئی, اور بڑی دادی کے آتے کے ساتھ ہی وہ ایک دم اٹھ کے ایسی بیٹھ گئی جیسے آپ بیٹھے بالکل. ارے میں نے کہا یہ کون سا کوما ہے بنا دوائی بنا اس کے, ابھی تو ڈیپ کوما میں تھی, کتنا دوا کر 10 دن سے پڑی تھی جیسے کوئی ناٹک کرتا ہے, یہ کیسا کوما ہے, اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی ایسے بالکل ایک دم, اور کچھ نکال کے دادی کے ہاتھ میں. تو پہلے لوگ بڑے تھے کہ ایک نیا پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا ہے, تو کہیں سے کچھ آیا ہوگا, بائدہ میں کوما میں چلی گئی, تو اس کی بدھی میں تھا دادی کو دینا ہے کچھ کہنا ہے. تو بڑی دادی بھی تھی, دادی گلزار جی بھی کھڑی تھی وہیں پہ, دادی بڑی دادی سے بالکل ملی, اور ملنے کے بعد دادی گلزار بھی کھڑی ہوئی تھی, مطلب بالکل نسل موہا سوروپ دیکھا, کوئی اٹینشن نہیں کسی کی طرف, اور سب برابر برابر کھڑے ہیں. اور بڑی دادی سے ملی, درشٹی لی, وہ جو کچھ دینا کرنا تھا دیا, اور پھر کوما میں, ڈیپ کوما میں 15 منٹ بعد شریر چھوڑ دیا. اتنا کانشیس پیشنٹ, سارے بلڈ پریشر سب کچھ ٹھیک, اور ایک دم پھر دادی, اس کے من میں سنکلپ رہا ہوگا کہ بڑی دادی چھٹی لے کر آؤں گی تب شریر چھوڑوں گی, کیونکہ دادی کے پتی میں نے دیکھا, حالانکہ بہت بڑی تھی عمر میں, دادی گلزار جی کی مدر تھی ویسے لوکیک میں دیکھا جائے, لیکن بڑی دادی کے پتی اور پرانے جو بہنیں ہیں اور بھائی ہیں جو پرانے, اتنا ریسپیکٹ ریگارڈ تھا بڑی دادی کے پتی جیسے بابا کے پتی تھا, کہ گدی میں بابا کی پہ تو بابا ہی ایک طریقے سے, اوروں کی طرف نہیں دیکھا, لوکیک بیٹی کی طرف نہیں دیکھا, اور دادی کو دیکھے اور پھر ڈیپ کوما ہم نے خوب ہلایا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ انبھو تو آج تک کہیں مینشن نہیں ہے کہیں کتابوں میں کہیں بھی, اور 15 منٹ بعد شریر چھوڑ دیا. تو اس دن پہ ایک پرفل بھائی تھے یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ میں, ان کا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا, تو ینگ تھے, شریر چھوڑا, تو سندیش دیا, بابا کو آنا تھا, بابا آئے تو کہا دادی, بابا دادی نے شریر چھوڑا, تو بابا کو تمہیں نہیں جانا ہے کیا, آج وہ سب سبق آ گئے, بڑا جواب تو دیتے نا, دادی اتنی بڑی دادی ہے, تو بابا انہوں نے شریر چھوڑا, بابا کو سب پتا ہی ہے, لیکن پھر بھی فارمل ہوتی نا انفارمیشن, تو دھیرے سے کہتے تمہیں نہیں چھوڑنا کیا, تو وہ دن سک مکا. پھر بابا نے مرلی میں کہا کہ بابا کو جو بابا کے جو انند بچے ہیں, بابا ان کو نسٹ موہا بنا ہی دیتا ہے, چاہے ودھی کے دوارا, क्या व्याधि के द्वारा, चाहे विधि के द्वारा या व्याधि के द्वारा। तो विधि तो वही है राजयोग की, हमारी खूब अभ्यास है, और व्याधि बीमारी आगे कुआ में चलेगी। बाबा के अन्य सेवाएं की थी, एक्स्ट्रा मार्क से बाबा ने ट्रांस में खींच लिया। दूसरा एग्जाम्पल दादी चंद्रमणि जी का, उन्होंने बेंगलोर साइड में शरीर छोड़ा, तो बाद में जब मेरी बात हुई बहनों से उसे पे, तो भाई क्या हुआ, तो बोले करीब 12-18 घंटे करीब दादी कोमा में रही, हार्ट अटैक हुआ, इधर उधर काफी डॉक्टर में घूमा, वहां डॉक्टर नहीं थे, कहीं फिर पहुंचे इस हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां फैसिलिटी नहीं है, दूसरे डॉक्टर में पहुंचे, और इस तरह घूमते करते करीब 12-18 घंटे गुजर गए, और फिर शरीर छोड़ा। तो उनका जब भोग लगा, आप भी कुमार बहन ने सुना होगा, तो भोग में जब दादी गुलजार भोग लेके गई, तो बोले दादी आज भोग किसका लेके आई हो, बोले आपका भोग लेकर आए हैं, ऐसा कुछ संदेश मैंने सुना था। तो बोले मेरा भोग, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोले दादी आपका शरीर पूरा होगा इतने घंटे पहले, उन्हें पता ही नहीं था दो दिन तक। हाँ, तो बोले दादी अब मुझे पता पड़ा कि आप ऊपर जो ट्रांस में आते कितना मजा है यहाँ पे। तो बोले दादी मैं आप भोग लाई हूँ आपके लिए, बाबा के लिए। बोले मेरा क्या, जो तो आपका शरीर छोड़ गए, अरे मुझे, अरे बाबा तो बाबा आपने बताया नहीं, मैं बड़ी दादी छुट्टी तो लेके आती कम से कम। तो बाबा ने कहा वो छुट्टी दे देती तो है, यानी कि कहने का मतलब डॉक्टर हिसाब से पल्स है, ब्लड प्रेशर है, सांस है, सब चल रहा है, शरीर कर्म भोग भोग रहा है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि मेरा शरीर छूटना तो दूर संस्कार भी हो चुका है, और भोग लेकर जब पहुंचे तब पता पड़ा अच्छा मेरा शरीर भी पूरा हो गया। ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल प्रैक्टिकली बी केस के देखे हैं, यानी कि ये है पावर बाबा की, कि जो अंत समय बच्चे को, अगर अन्य बच्चे तड़फने नहीं देगा। और भी कई एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिवे एग्जाम्पल देखे, जो मेडिकल साइंसेज में कहीं भी संभव ही नहीं है, कोई उसका जवाब ही नहीं है। ये है राजयोग की शक्ति, जिसके द्वारा तो सहन शक्ति बढ़ती है, राजयोग से केमिकल्स पैदा होते हैं जो मॉर्फिन की तरह, पेन किलर की तरह काम करते हैं, जिससे हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। डिटैच होने की पावर से शरीर में, जब योग में बैठते चींटी भी काटे मच्छर भी काटे, गहरे योग में होते पता ही नहीं पड़ता आपको। तो जितना गहरा योग होगा, शरीर की शून्य अवस्था कंप्लीट तो बाद में है लेकिन खुद ही चली जाती है, तो शरीर के कष्ट भी उस समय ना दर्द होता, ना खांसी उठती, ना कुछ होता, सब शांत हो जाता है। योग से उठते हैं पेट में हलचल चालू, यहां हलचल चालू, शरीर में दर्द चालू होता है ना सबको। तो जैसे नींद में भूल जाते हैं, जैसे गहरे एकाग्रता में आप खोए हो अपने काम में, लोग के काम में बैठे हो, तो तब क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां भूल जाती हैं। फिर सेवा खत्म हो गई तो फिर दर्द भी चालू हो गया, ये भी चालू होगा, फिर हम कहते हैं बाबा बड़ा चतुर है, काम निकलवाते समय तो जो है दर्द खत्म कर देता है, और सेवा खत्म होते ही फिर चालू हो जाता है। वो दरअसल योग की शक्ति का कमाल है, जब हम बाबा की सेवा में होते हैं तो बाबा की एक्स्ट्रा पावर हमारे पास होती है। तो हमारा भी योग कम हो, लेकिन बाबा का योग हमारे साथ होता है, क्योंकि बाबा की सेवा में है, तो उस समय हमारी चेतना शरीर से निकल के कर्मयोगी की स्टेज बन जाती है, और कर्मयोगी की स्टेज से, इसलिए बाबा ने क्या कहा, कर्म भोग को कर्म योग से चुकता करो। बाना जब कष्ट हो रहा हो, और अगर सीरियस बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने हिलने के लिए मना नहीं किया है, और आप कर्मयोग में लग जाओ, बाबा की सेवा में लग जाओ, तो फिर उस समय के लिए सारे कष्ट बीमारियां विदाई ले लेती हैं, और जाते फिर वापस आ जाती है। हम देखते थे बड़ी दादी जी जब जाती थी टूर लगाने की सेवा पे, और भयंकर दर्द होता था उनको कमर में, दादी को एक नस थी, गड़बड़ करती थी बहुत ज्यादा। तो सब लोग कहते दादी नहीं जाना है, दादी नहीं जाना, टूर कैंसिल करो, लेकिन दादी तो बड़ी निश्चय बुद्धि थी, बाबा की सेवा के लिए ना ही नहीं करना। तो दादी पूछती डॉक्टर क्या करना है, मैं कहा डॉक्टर हिसाब से नहीं जाना है और बाबा के हिसाब से जाना है, आप मानोगे नहीं क्योंकि बाबा की सेवा है, तो मैं क्या कहूं, डॉक्टर हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं डॉक्टर, तबियत देख लेंगे, जिस समय चलना होगा तो मुझे मालूम होगा कुछ ना कुछ जादू हो जाएगा। जिस समय चलने की तैयारी, दो घंटे पहले ही दादी का दर्द वर्द सब गायब हो जाता था, और टूर से 10-12 दिन घूम के आती थी, और आते ही वो दर्द फिर चालू हो जाता था। अब बताओ क्या है सर, तो कहते बाबा बड़ा चतुर सुजान है, जब सेवा करनी होती है ना तो बीमारी को भी पीछे कर देता है कि बाद में आना अभी बच्ची सेवा पे। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा बड़ी दादी का। तो फिर बाद में हम समझ गए, दो तीन बार तो हमने हुज्जत की दादी नहीं जाना है, बाद में समझ गए भैया उनको रोको मत, सेवा तो होके रहेगी, हाँ दर्द भी दादी का चला जाएगा, दवाई देते रहो। तो हमने फिर कभी कभी ये नहीं कहा दादी टूर कैंसिल करो। तो ये बाबका राजयोग का कमाल है, कर्म योग से कर्म भोग को चुकता करो। ऐसे बहुत अनुभव हैं और आपके भी बहुतों के होंगे कि अगर बाबा की सेवा में बिजी कर दिया, इसका मतलब ये भी नहीं किसी को हार्ट अटैक को कह दो हम तो सेवा करेंगे, भरी उठाकर वजन उठाकर चलेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। डॉक्टर की श्रीमत से भी चलना है, श्रीमत तो नहीं कहेंगे, मेडिकल मत के हिसाब से चलना है, श्रीमत तो बाबा की है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई सीरियस रोग नहीं है और हमने देखा है कि अगर हम बाबा की सेवा में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें मदद मिलती है और कर्म भोग सहज चुकता हो जाता है। बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं बहुत काम करती हैं। तो सहन शक्ति से जीतें, औषधि की शक्ति से जीतें, औषधि नहीं तो सहन शक्ति से जीतें, दुआओं की शक्ति से जीतें। बाबा ने कहा दुआ भी दवा का काम करती है ना, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब अनुभव हैं, आप लाभ उठाएंगे। तो इसी सब शुभकामनाओं के साथ कि आप सब भी बाबा के बच्चे सब प्रकृति जीत बन जाएं और सदा विजयी निकले। दादी चंद्रमणि जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
बस दो घड़ी प्रभु